नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं निम घोलकर जी, जो एक सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखिका हैं। आज वे हमें बताएंगी कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अपने करियर की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। निम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी पर। कैसी हैं आप?
हाय प्रियंका, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माइग्रेंट्स जब यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो जनरली कौन सी समस्याएं उन्हें सताती हैं?
सो प्रियंका, जब माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आते हैं और अपने पहले जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उन्हें, जैसे आपने कहा, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे कॉमन चैलेंज है कि उन्हें लोकल एक्सपीरियंस न होने के कारण कई बार उन्हें इंटरव्यू प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में नहीं बुलाया जाता, सेकेंड इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाता। सो दैट्स द फर्स्ट वन। दूसरा चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। कई बार माइग्रेंट्स को अंग्रेजी भाषा का ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता और इसी कारण इंटरव्यू में वो अपने ओपिनियंस, इंसाइट्स, थॉट्स शेयर नहीं कर सकते इफेक्टिवली। और तीसरी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम। जब हम नए देश में आते हैं, नए कल्चर में आते हैं, तो कई बार माइग्रेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो मेरे ख्याल से ये सबसे कॉमन समस्याएं हैं।
तो इन समस्याओं के उपाय के तौर पर जॉब इंटरव्यूज के दौरान कौन से गोल्डन रूल्स उन्हें फॉलो करने चाहिए?
सो पहला रूल है कि किसी भी इंटरव्यू के पहले जो कंपनी है जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इन डेप्थ रिसर्च करना चाहिए। ज्यादा करके मोस्ट कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ वेबसाइट पे जाते हैं कंपनी के और वो वैल्यूज, मिशन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये जो जनरल इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और क्योंकि उनका रिसर्च इतना बेसिक होता है, दे डोंट स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। सो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपकी रिसर्च थोड़ी और बढ़िया होनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगी कि इन एडिशन टू वेबसाइट, आपको गूगल पे जाके मीडिया मेंशंस देखने होंगे। देखना होगा कि क्या वो कंपनी न्यूज में थी रिसेंटली फॉर एनी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स। इसी तरह आप रिक्रूटर्स को या हायरिंग मैनेजर्स को दिखा सकते हैं कि आपने सच्ची में आपका होमवर्क किया है। जब भी इंटरव्यू एंड हो जाता है तो ज्यादा करके रिक्रूटर्स पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई सवाल है, और कैंडिडेट्स कई बार कहते हैं कि नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझा दिया। अगर आपको प्रोफेशनल एक इम्प्रेशन करना है तो बहुत जरूरी है कि आप एक या दो सवाल जरूर अपने इंटरव्यूअर को पूछें। वेरी इंपॉर्टेंट।
नीम जी, जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब जो पहली बार जॉब इंटरव्यू को जाते हैं या फिर पहली बार किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उन्होंने कौन सी गलतियाँ टालनी चाहिए?
गुड क्वेश्चन। सो जब फ्रेशर्स इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, वो ज्यादा करके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। अब ये सारी जानकारी उनके रेज्यूमेस में वैसे ही अवेलेबल है। फ्रेशर्स को इंस्टेड अपने स्किल्स के बारे में बात करनी चाहिए, वो क्या वैल्यू ला रहे हैं उस जॉब के लिए। दूसरी चीज है कि कई बार मैंने ऐसे कई रेज्यूमेस देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस स्किल में वो एडवांस्ड स्किल्स उनके पास है, लेकिन जब मैं उनका रेज्यूमे देखती हूँ तो कई बार उन्हें मार्जिन्स, इंडेंटेशन, ये पता चलता है कि उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सो अगर आप अकाउंटिंग या आईटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ठीक सब तरह से आनी चाहिए, जैसे कि वर्ड और एक्सेल। और अगर आप बेसिक या इंटरमीडिएट हो तो वही लिखना चाहिए रेज्यूमे में, ये नहीं लिखना चाहिए कि आप एडवांस्ड है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स को इमीडिएटली पता चलता है कि आपका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है उसमें।
नीम जी, ऑस्ट्रेलिया की कॉरपोरेट लाइफ में कौन से एटिकेट पालना जरूरी है?
अब मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 27 ईयर्स से हूँ, तो मुझे यहाँ के कॉरपोरेट कल्चर और एटिकेट में वैसे भी आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इयर्स। पहली बात, पंक्चुअलिटी। बहुत से माइग्रेंट्स पंक्चुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप 5 मिनट भी लेट है अपनी मीटिंग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपने बॉस को या कलीग को एक टेक्स्ट मैसेज भेजे सेइंग कि आप, यू आर रनिंग लेट और आप कब पहुंचेंगी। ज्यादा करके मीटिंग्स को टाइम पे आने की जरूरत है, यू मस्ट कम टू वर्क ऑन टाइम। सो पंक्चुअलिटी ये सबसे बड़ी चीज है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी बात है कि कई बार माइग्रेंट्स जब काम पे आते हैं और उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, तो अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो वो चुप बैठते हैं, वो क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आया तो शायद मेरे बॉस मुझे जज करेंगे या उन्हें लगेगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, और इसलिए वो जाके अपना काम शुरू करते हैं, और जब वो सबमिट करते हैं तब बॉस को पता चलता है कि सारा कुछ गलत था। सो मैं तो कहूंगी कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एटिकेट टिप्स, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, या फिर पैराफ्रेज द इंस्ट्रक्शंस, ताकि आपको गारंटी मिले कि जो भी आपके बॉस कह रहे हैं और आपने जो समझा है वो एक ही बात है। तीसरी चीज, नेटवर्किंग स्किल्स। मैंने देखा है कि कई माइग्रेंट्स नेटवर्किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि माई वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, इसलिए वो जो भी सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी कंपनी, उसके लिए नहीं जाते। नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क कल्चर, एटिकेट, सो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए।
COVID-19 महामारी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स बदले, उसी के साथ साथ अपना फील्ड भी चेंज किया। तो ये बदलाव उन लोगों ने अपने रेज्यूमे पर और अपने इंटरव्यूज में कैसे दिखाना चाहिए?
आपने सही कहा कि पैंडेमिक में कई लोगों ने अपने करियर का पूरा डायरेक्शन बदल दिया है। ऐसे समय जब आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करते हैं तो आपको उन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए जो ट्रांसफरेबल है। इसे ट्रांसफरेबल स्किल्स कहा जाता है। व्हाट आर ट्रांसफरेबल स्किल्स? ये वो स्किल्स है जो आप एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एचआर में है और आपको सेल्स में काम ढूंढना है, तो वो कौन से स्किल्स है ह्यूमन रिसोर्सेज में जो आप सेल्स में भी यूज कर सकते हैं इक्वली इफेक्टिवली। सो अगर देखा जाए तो ट्रांसफरेबल स्किल्स के सम एग्जांपल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। ये कौन से भी इंडस्ट्री में आप हो, कौन से भी जॉब में आप हो, तो ये स्किल्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है और यूजफुल रहती है। सो मैं तो कहूंगी कि जो भी इंडस्ट्रीज बदल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हार्ड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें अपने उन सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसफरेबल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए जो वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री ले सकते हैं।
निम जी, हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर की शुरुआत करने वाले सभी लोगों को आगे का सफ़र आज की हमारी बातचीत के बाद और भी आसान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका मौल्यवान समय हमारे लिए निकाला।
धन्यवाद प्रियंका, थैंक यू वेरी मच।